بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگی محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज मंगलवार है, इस बंद की 29, रमजान की 8 और मार्च की 19 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप रमजान के संबंध में सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा के अंत में आप सुनेंगे कार्यक्रम ईरानी तेल के राष्ट्रीयकरण के संबंध में हमारा विशेष कार्यक्रम। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहंदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के आरोपों को रद्द कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। गत 24 घंटों के दौरान जायरीन सरकार के पार्श्विक हमलों में 81 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हो गए। बीजिंग ने कहा है कि अमेरिका को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने यमन और लाल सागर के संबंध में अमेरिका और ब्रिटेन के आरोपों को निराधार करके उन्हें रद्द कर दिया है। राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत अमीर सईद ईरवानी ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाम पत्र में लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद के मंच का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान कड़ाई से इन आरोपों को रद्द करता है और उसका मानना है कि वाशिंगटन और लंदन अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन यमन के खिलाफ अपने गैर कानूनी हमलों व कार्यों का औचित्य दर्शाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही हैं। राष्ट्रसंघ में ईरानी राजदूत ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान किसी प्रमाण के बिना उस बयान को रद्द करता है जिसे सुरक्षा परिषद की बैठक में फ्रांसीसी राजदूत ने पढ़ा। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य देश है, इस नाते तेहरान पेरिस का आह्वान करता है कि वो जिम्मेदारी पर अमल करे और स्वतंत्र व स्वाधीन देशों पर राजनीतिक आरोप का लेबल लगाने से परहेज करे। इसी प्रकार राष्ट्र संघ में ईरानी राजदूत ने यमन के खिलाफ अमेरिका के तथा कथित गठबंधन के हमलों को गैर कानूनी बताया और एक बार फिर उनकी भर्त्सना की और उसे यमन की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया। इसी प्रकार सईद इरवानी ने इन हमलों को क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकिर ने باقری نے سوموار کو تہران میں سیریائی سمکش سیریائی رکشا منتری علی محمود عباس کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اسرائیل کی آکرمکتا پر لگام لگانے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ نرنتر پرامرش کی ضرورت ہے۔ غزہ یدھ میں زامی سینا کے یدھ افرادوں کا ذکر کرتے ہوئے میجر جنرل باقری نے کہا کہ اس یدھ میں پیڑت اور اسہائے فلسطینیوں نے یدھ کی شروعات سے ہی زامی شاسن کے خلاف پرتروھ کا ایک نیا اتہاس رچ دیا ہے۔ انہوں نے یہ الیکھ کیا کہ قریب پچھلے 6 مہینوں کے دوران اسرائیل کے اب تک کے سب سے بھیانک حملوں کے خلاف غزہ میں فلسطینیوں کے پرتروھ نے پرتروھی مورچے کی اچھ شکتی اور چھمتا کا پردرشن کیا۔ اس ملاقات میں سیریائی رکشا منتری کا کہنا تھا کہ غزہ استھت پرتروھی سنگھٹنوں دوارا 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف کیے گئے الاقصی آپریشن کے بعد سے وشوک سمیکرن بدل گئے ہیں۔ سیریائی رکشا منتری عباس نے کہا کہ پرتروھی مورچے کے سدسیوں کے روپ میں ایران اور سیریا کی سشستر سیناؤں نے آپسی سمبندھوں میں ایک بڑی سفلتا حاصل کی ہے اور سبھی چھیتروں میں دوپکشیہ سمبندھوں کو اور ادھک مضبوط بنانا چاہیے۔ آج منگلوار 19 مارچ 2024 کو ایران کے تیل کے ادیوگ کے راشٹریکرن کی ورشگانٹھ کے اوسر پر دیش بھر میں سارجنک اوکاش ہے۔ 73 سال پہلے آج ہی کے دن ایران کے راجنیتک اتہاس میں ایک اہم موڑ آیا تھا۔ ایران کے تیل ادیوگ کا راشٹریکرن ایک اتہاسک ودروہ اور کٹھن ایوم چنوتی پورن سنگھرش کا پریڑام تھا۔ 20 مارچ 1951 کو ایران کی سنسد میں تیل آیوگ کے سدسیوں دوارا ایران کے تیل ادیوگ کے راشٹریکرن کی یوجنا کو منظوری دی گئی اور ایران کے تیل کا ادھکارک طور پر راشٹریکرن کر دیا گیا۔ ایران کے تیل ادیوگ کے راشٹریکرن کے کارن ایک تناؤ پورن راجنیتک دور کے بعد ایرانی تیل کی لوٹ مار کرنے والے برٹن کا ہاتھ کٹ گیا، جس کے بعد اس چھیتر پر دھیرے دھیرے برٹن کی پکڑ کمزور ہوتی چلی گئی۔ ایران کے تیل ادیوگ کا راشٹریکرن پشچم ایشیائی چھیتر میں راجنیتک وکاس کے اتہاس میں ایک مہتوپورن موڑ تھا۔ مصر میں جمال عبد الناصر کے نیتتو میں سویز نہر کا راشٹریکرن ایران کے تیل ادیوگ کے راشٹریکرن کے بعد ہی کیا گیا تھا۔ ایران کے سنچار اور سوچنا پرودیوگکی منتری عیسیٰ زارپور کا کہنا ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران اپگرہ اور انترکش پرکشیپن ویکل کے نرمان میں دنیا کے شیش 10 دیشوں میں سے ایک ہے۔ چمکیجا زارپور نے ایران کے عربی بھاشا کے ٹیلی ویژن چینل العالم کے ساتھ ایک ساکشات کار میں کہا، ایران کے پاس انترکش میں اپگرہ لانچ کرنے اور اپگرہوں سے ڈیٹا پراپت کرنے کے لیے گراؤنڈ اسٹیشن موجود ہیں۔ ورش 1979 کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد انترکش کارکرم میں ایران کی سفلتا کو ایک میل کا پتھر بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ادھارن کے لیے ہمارے انترکش پرکشیپن فیکل 200 کلوگرام تک وزن والے اپگرہوں کو لے جا سکتے ہیں اور انہیں انترکش میں استھاپت کر سکتے ہیں۔ ایرانی منتری کا کہنا تھا کہ تہران اگلے 5 ورشوں میں انترکش میں بھاری اپگرہ بھیجنے کی بھی یوجنا بنا رہا ہے۔ یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین میں اپنے آکرمن سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس کی یوکرین کی لمبی دوری کے اور سیما پار حملوں سے رکشا کرنے کے لیے ایک بفر زون بنانے کی یوجنا ہے۔ روس میں حالیہ راشٹرپتی چناؤ میں ولادیمیر پوتین نے بھاری جیت درج کی اور ایک بار پھر روس کے راشٹرپتی بن گئے۔ راشٹرپتی بنتے ہی انہوں نے پشچمی دیشوں کو چیتاونی دی ہے کہ یدی ناٹو نے سکریتا دکھائی تو تیسرا وشو یدھ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ روس کی سینا نے یوکرین کے خلاف یدھ میں پرگت کی ہے، لیکن پرگت کی یہ رفتار دھیمی رہی ہے اور مہنگی ثابت ہوئی ہے۔ یوکرین نے روس میں تیل ریفائنری اور ڈیپو کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے لمبی دوری کے ہتھیاروں کا اپیوگ کیا ہے۔ یوکرین میں استھت کریملن کے پرتی دوندیوں کے ایک سموہ نے سیما پار حملے بھی شروع کیے ہیں۔ पुतिन ने रविवार को देर रात कहा कि हम जरूरी होने पर यूक्रेनी सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाने पर विचार करेंगे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गजा में जानी सैनिकों ने 81 फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया और 116 को घायल कर दिया। इसके बाद से गजा युद्ध में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 31,726 हो गई है, जबकि 73,792 घायल हुए हैं। वहीं 8,000 अब भी लापता हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे मलबे के नीचे दबकर मर गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार मरने वालों में 70% बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा सोमवार को इसराइली सेना ने तोपों और टैंकों से अशफा अस्पताल पर हमला कर दिया, जहां करीब 3,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजरायली सेना ने यह हमला उस वक्त किया जब लोग रोजा इफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे। अस्पताल पर इसराइल के हमले में दर्जनों लोग शहीद हो गए और 80 से ज्यादा लोगों को जानी सैनिक उठाकर ले गए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज मंगलवार को अपनी साप्ताहिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और फिलीपीन के सैनिक सहकारिता से चीन की संप्रभुता और समुद्री अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अमेरिका को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। समाचार एजेंसी इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका और फिलीपीन के संबंधों का प्रयोग मनीला के गैर कानूनी दावों का समर्थन करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में नहीं किया जाना चाहिए और अमेरिका को चीन और फिलीपींस से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने एक बयान जारी करके यमन के हूती संगठन के हमलों की भर्त्सना की है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने अपने बयान में कहा है कि वे लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हूसियों के हमलों की भर्त्सना करते हैं। साथ ही इस बयान में यमन के अंसारुल्लाह संगठन से मांग की गई है कि वो व्यापारिक जहाजों पर हमलों को बंद करें और तनाव को अधिक होने से परहेज करें। ज्ञात रहे कि यमन की सशस्त्र सेना के जवान गजा पट्टी पर इसराइल के पारसिक हमलों के कुछ दिनों के बाद से हर उस जहाज को अपने हमलों का लक्ष्य बनाते हैं जो अवैध अर्थ के फिलिस्तीन की ओर जाता है। अंसारुल्लाह ने ऐलान कर रखा है कि जब तक गजा पट्टी पर इसराइल के पारसिक हमले जारी रहेंगे तब तक वो इसराइली जहाजों और हर उस जहाज को निशाना बनाएगा जो अवैध अर्थकृत फिलिस्तीन की ओर जाएगा और इसके अलावा लाल सागर और बाबुल मंदब स्ट्रेट से हर जहाज की आवाजाही पूरी तरह स्वतंत्र है। और अंत में यह समाचार की रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का आज आखिरी लाइव प्रसारण पेश किया जा रहा है। 19 मार्च 2024 को हमारा आखिरी सीधा प्रसारण तेहरान के समय के अनुसार शाम 5:53 पर शुरू होकर 6:50 पर समाप्त हो जाएगा और इसी आखिरी प्रसारण के साथ ही हमारा लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा। भारत के समय के अनुसार रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का आखिरी लाइव प्रसारण शाम 7:53 पर शुरू होकर 8:50 पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले 2 सप्ताह तक हमारी फ्रीक्वेंसियों पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम हिंदी भाषा में प्रसारित होंगे, मगर उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसियों पर हिंदी भाषा का प्रसारण बंद हो जाएगा। 25 अप्रैल 1998 को शुरू होने वाले इस प्रसारण का सफर लगभग 25 साल 10 महीने 24 दिन का था। इस दौरान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सहित दुनिया के अनेक देशों से हिंदी भाषी श्रोता बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े और ये रिश्ता बड़ी मधुर फिजा में तैयार करने में सफल रहा। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास और आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। श्रोताओं, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण फैसले पर, और इसके साथ ही हम एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करने जा रहे हैं, और वो घोषणा है तेहरान रेडियो के हिंदी प्रसारण की समाप्ति के बारे में। तो चर्चा के विषय यही है, आरंभ करते हैं ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के दिन से। ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके बाद ईरान के तेल उद्योग का नया सफर शुरू हुआ। इस्लामी क्रांति के बाद इस उद्योग ने बिल्कुल ही अलग अंदाज से अपनी यात्रा तय की है। जायजा ले रहे हैं सैयद मीसम।
ईरानी कैलेंडर के आखिरी महीने इसवंत के आखिरी दिन को ईरान में तेल के राष्ट्रीयकरण के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईरान की संसद से पूरे ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कानून पास हुआ और देश की जनता के अधिकारों व हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके बाद से तेल उद्योग साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से आजाद हो गया। यह कानून 20 मार्च 1991 को पास हुआ था। उस समय पश्चिमी एशिया में ईरान सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था, जबकि विश्व स्तर पर अमरीका, वेनेजुएला और सोवियत संघ के बाद चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। अमेरिका और रूस दोनों की नजरें ईरान के तेल पर थीं, और दरअसल ईरान के तेल पर साम्राज्यवादी ताकतों के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में एक दूसरे को पीछे छोड़ने और अपने अपने हित साधने के लिए ये ताकतें ईरान के राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर हर प्रकार का प्रभाव इस्तेमाल करती थीं। स्थिति ये हो गई थी कि दरबार से जुड़े लोगों के अनुसार संसद में कि जो एक दिखावटी संस्थान था, वही लोग सदस्य बनते थे जिनके नामों पर बाहरी ताकतों की मोहर लगती थी। यह हालत हो गई थी कि विदेशी दूतावासों में सांसदों और अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की जाने लगी थी। ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार ने तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कानून को अप्रैल 1991 में लागू करने के लिए अपने एजेंडे में शामिल किया तो मुसद्दिक सरकार के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। अगस्त 1953 में मुसद्दिक की सरकार के खिलाफ अमरीका और ब्रिटेन ने मिलकर बगावत करवा दी। बगावत के बाद सरकार गिर गई और ईरान के तेल उद्योग के दरवाजे एक बार फिर विदेशी कंपनियों के लिए खुल गए। शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम और कैलिफोर्निया और टेक्सास की कंपनियों ने ईरान के तेल के कुओं पर अपना नियंत्रण और भी बढ़ा लिया। ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति सफल हुई तो उसके बाद ईरान के तेल संसाधनों पर विदेशी कंपनियों के नियंत्रण से संबंधित समझौते रद्द कर दिए गए। अब तेल के संसाधन खोजने और तेल निकालने और रिफाइन करने के ठेके ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी के हाथ में आ गए। इस्लामी क्रांति की सफलता और अमरीका के दूतावास पर छात्रों के नियंत्रण के बाद जो जासूसी और साजिश का केंद्र बन गया था, ईरान के खिलाफ अमरीका की पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीका को अच्छी तरह पता था कि ईरान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तेल उद्योग को निशाना बनाया जाना जरूरी है। पाबंदियां लगाने के पीछे अमरीका का लक्ष्य यह था कि ईरान आर्थिक रूप से बेबस हो जाए, वो ना तो तेल का उत्पादन कर सके और ना तेल की आमदनी उसे हासिल हो, क्योंकि इससे पहले तक ईरान का तेल उद्योग उन उपकरणों पर निर्भर था जो पश्चिमी देशों से इम्पोर्ट किए जाते थे। मगर व्यावहारिक रूप से यह हुआ कि ईरान तेल और गैस के उद्योग में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता गया। दोनों उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले जटिल उपकरण और बड़ी मशीनें भी ईरान के भीतर ही बनाई जाने लगी। इससे जहां एक तरफ तेल व गैस उद्योग में ईरान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा, वहीं मशीनों के निर्माण के मैदान में भी उसे अनुभव हासिल होने लगे। यह तो वास्तविकता है कि तेल और गैस को ईरान की अर्थव्यवस्था में बहुत बुनियादी पोजीशन हासिल है, लेकिन ईरान ने इस बीच ये भी किया है कि देश की अर्थव्यवस्था के स्रोतों में विविधता लाने के लिए भी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है। ईरान इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को लगातार सक्रिय करता जा रहा है और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाए और लागू किए जा रहे हैं।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का ये प्रसारण आखिरी प्रसारण है। इसके बाद रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का लाइव प्रसारण समाप्त हो जाएगा। ब्यौरा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का आज आखिरी लाइव प्रसारण पेश किया जा रहा है। 19 मार्च 2024 को हमारा आखिरी सीधा प्रसारण तेहरान के समय अनुसार शाम 5:53 पर शुरू होकर 6:50 पर समाप्त हो जाएगा और इसी आखिरी प्रसारण के साथ ही हमारा लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाएगा। भारत के समय अनुसार रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का आखिरी लाइव प्रसारण शाम 7:53 पर शुरू होकर 8:50 पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले 2 सप्ताह तक हमारी फ्रिक्वेंसी पर रिकॉर्डेड प्रोग्राम हिंदी भाषा में प्रसारित होंगे, मगर उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी पर हिंदी भाषा का प्रसारण बंद हो जाएगा। 25 अप्रैल 1998 को शुरू होने वाले इस प्रसारण का सफर लगभग 25 साल 10 महीना 24 दिन रहा। इस दौरान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश सहित दुनिया के अनेक देशों से हिंदी भाषी श्रोता बहुत बड़ी संख्या में हमसे जुड़े और ये रिश्ता बड़ी मधुर फिजा तैयार करने में सफल हुआ। श्रोताओं ने हमारी सामग्रियों पर अपनी राय दी, अपनी आलोचनाएं पेश की, मूल्यवान सुझाव दिए। कार्यक्रमों के अलावा बहुतों ने अपने जीवन की मधुर व कटु घटनाएं हमारे साथ साझा की, जिससे रेडियो तेहरान की ध्रुवों पर एक परिवार तैयार हो गया। ऐसा परिवार जिसकी सरहदें देशों की सीमाओं तक सीमित बल्कि इससे कहीं अधिक विस्तृत थीं और हैं। रेडियो तेहरान से जुड़े सभी लोगों के लिए ये समय काफी भावुकता का समय है कि आवाज के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा ये विशाल कुनबा मौजूद तो है, लेकिन इसको एक दूसरे से जोड़ने वाले डोर यानी रेडियो तेहरान की आवाज अब नहीं रहेगी। मगर साथ ही ये आशाजनक निर्णय भी लिया गया है कि हमारी मीडिया संबंधी गतिविधियां अब वेबसाइट parstoday.ir/hi पर और भी व्यापक रूप से आगे बढ़ेंगी, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम अधिक मजबूती के साथ अपने श्रोताओं की सेवा करने की कोशिश करेंगे।
श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। हमें ये ऐलान करते हुए दुख और तकलीफ है कि ये आखिरी राजनैतिक चर्चा है जो आपकी सेवा में हमारी इस सभा से प्रस्तुत की गई है। इसके बाद हमारा लाइव प्रसारण नहीं रहेगा। जैसा कि मोहम्मद मेहदी ने रिपोर्ट में बताया कि अब हम सोशल मीडिया और वेबसाइट के प्लेटफॉर्मों पर आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। इस्लामी गणराज्य ईरान से संबंधित घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में आपको रिपोर्टें, समीक्षाएं, अच्छी वीडियो क्लिप्स और अच्छे कंटेंट आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जाने का सिलसिला चलता रहेगा। तो श्रोताओं के साथ हमारा ये रिश्ता दरअसल टूट नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रारूप बदलने जा रहा है। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलताओं और उत्थान की कामना करते हैं।
ईश्वरीय आतिथ्य है।
दोस्तों, कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
रमजान का बरकतों से भरा महीना चल रहा है और आज 8 रमजान है। आइए पहले 8 रमजान की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं।
अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक्नी फीहे रहमतल अयताम व इत्आमत ताम व इफ़शाम अस्सलाम و صحبت الكرام بطولك يوم ملجأ الآملين
हे दयावान, आज के दिन मुझे अनाथों से प्रेम करने, भूखों को खाना खिलाने, सलाम को प्रचलित करने और भले तथा अच्छे लोगों के साथ रहने का अवसर प्रदान कर। तुझे तेरी रोजी की कसम हे आशावानों की ढारस।
रमजान का महीना बड़ा अच्छा अवसर है सारे मुसलमानों के लिए कि वे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। जब इंसान कई घंटे शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है और उन पर नियंत्रण रखता है तो जैसे भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो ये एक प्रकार का संघर्ष है। इससे हमारे भीतर ये यकीन और आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं। जब हम रमज़ान महीने में अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं तो पूरे साल में कभी भी ये काम करना हमारे लिए संभव है।
हम सब के माता पिता यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा आराम से जन्नत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ जिस चीज़ की उनकी इच्छा होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने उन्हें अनगिनत नेमतों से नवाजा था। इस बीच बस एक पेड़ था जिसके बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी कि इस पेड़ के करीब अगर वे गए या उसका फल खाया तो वे अत्याचारियों में शामिल हो जाएंगे। इसके बदले उन्हें वचन दिया गया था कि उनके आराम का हर सामान और उनकी ज़रूरत की हर नेमत स्वर्ग में मुहैया रहेगी। वहाँ न किसी को भूख सताएगी, न प्यास, न कोई दर्द होगा, न कोई गम।
हज़रत आदम और हव्वा जन्नत में सैर करते थे और वहाँ के पेड़ों की छाया में विश्राम करते थे। जन्नत के फूलों को देखकर आनंद उठाते थे और वहाँ की नेमतों से लाभान्वित होते थे। उनकी खुशनसीबी का दौर था और वो एक दूसरे के साथ शानदार जीवन गुजार रहे थे।
लेकिन उनका एक दुश्मन भी था। इस दुश्मन का नाम इबलीस था। इबलीस ने घमंड में पढ़कर अल्लाह के उस फरमान की अवमानना कर दी थी जिसमें अल्लाह ने उसे हज़रत आदम का सजदा करने के लिए कहा था। इसके नतीजे में इबलीस को अल्लाह की बारगाह से भगा दिया गया था। उसे हज़रत आदम और हव्वा की खुशी एक आँख नहीं भाती थी। वो ये देख कर बहुत क्रोधित था कि हज़रत आदम और हव्वा अल्लाह के करीबी बंदे हैं। उसने ठान लिया कि इन दोनों की खुशनसीबी की जिंदगी को हर हाल में भंग कर देना है।
इबलीस हजरत आदम और हव्वा को बहकाने के लिए दोस्त बनकर उनके सामने आया। उसने बड़ी चालबाजी के साथ उनसे बातचीत शुरू कर दी। उसने ये दिखाने के लिए दोस्ती में बहुत पक्का है उनसे बड़ा स्नेह जताया। अल्लाह ने सूर्य आराफ की संख्या 20 से 25 तक बताया है कि किस तरह इबलिस ने हज़रत आदम को बहकाया। इन आयतों में बताया गया है कि शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनकी छिपी हुई बुराइयां उनके सामने जाहिर कर दे। उसने कहा कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें इस पेड़ से केवल इसलिए दूर रहने को कहा है कि कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ और तुम्हारा जीवन अमर न हो जाए।
ज़ाहरी तौर पर इबलिस की ये दावत अमर जीवन की दावत थी, यानी वो चीज़ जिसकी ओर सारे इंसान अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं। مگر حقیقت میں اس کا ارادہ حضرت آدم اور حوا کی چھپی ہوئی برائیوں کو ظاہر کرنا تھا۔
اس کے بعد والی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے خود کو انسانوں کا شبہ چنتک ظاہر کرنے کے لیے قسم بھی کھائی کہ یقیناً میں تم لوگوں کا بھلا چاہتا ہوں اور تمہیں بہکانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ابلیس کا فریب آخرکار اپنا کام کر گیا۔ آدم اور حوا اس پیڑ کے قریب چلے گئے جس سے دور رہنے کے لیے اللہ نے انہیں آدیش دیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس کا پھل کھایا، ان کا لباس اتر گیا اور ان کی کروپتا ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم اور حوا اب ابلیس کی دربھاونا کا اندازہ کر بیٹھے تھے جو کہہ کہے لگا رہا تھا۔ انہوں نے پیڑ کے پتوں سے اپنا شریر چھپانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، تو امر ہو جانے کی چاہت تھی جس نے حضرت آدم اور حوا کو لباس سے ونچت کر دیا۔
سورہ آراف میں آیا ہے کہ ابلیس نے فریب سے انہیں ورجت پیڑ کا پھل کھانے کے لیے تیار کر لیا۔ جب انہوں نے اس پیڑ کا پھل چکھا، ان کی برائیاں ظاہر ہو گئیں۔ دونوں نے اپنے شریر پر پیڑوں کے پتے چپکانا شروع کر دیا۔
شیطان کی اس شیطانی حرکت کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟
یہ وہی بندو تھا جو حضرت آدم اور حوا بھول گئے تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ ابلیس چالاکی سے ان کے من سے یہ بات نکالنے میں سفل ہو گیا تھا۔
حضرت آدم کے زمین پر آ جانے کے بعد اللہ نے سارے انسانوں کو سمبودھت کر کے کہا کہ ہے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارا شریر ڈھانکے اور تمہاری سجاوٹ کا ذریعہ بنے۔ بے شک لباس اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح شریر کا ڈھانکنے کی چاہت اور شرم بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کے رسول خدا نے اسے پورے دین کے برابر قرار دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حیا پورا دین ہے۔
اتہاس عجیب طرح سے خود کو دہرا رہا ہے۔ انسانوں نے اتہاس میں جو کچھ لکھا ہے اور پڑھا ہے وہ تو خود کو دہرا ہی رہا ہے، جو نہیں لکھا گیا ہے وہ بھی خود کو دہرا رہا ہے۔ آج ہماری اور شیطان نما انسانوں کی داستان وہی ابلیس اور حضرت آدم کی داستان ہے۔ یہ لوگ بھی ابلیس کی طرح دشمنی کا انکار کرتے ہیں، مہیلاؤں کی آزادی وغیرہ جیسے نعرے لے کر سامنے آتے ہیں کہ انسانوں کو نگنتا کی طرف لے جائیں۔
اللہ نے آدم کی اولاد سے کہا کہ ہے آدم کی سنتان، کہیں شیطان تمہیں فریب نہ دے دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو فریب دیا اور انہیں جنت سے باہر نکال دیا اور ان کے شریر سے ان کا لباس اتروا دیا کہ وہ نگن ہو جائیں۔
ابلیس نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ اس کی چال یہ ہے کہ انسانوں کو نگنتا اور یون سمبندی برائیوں میں ڈال دے، وہی چیز جو انسانی سماجوں میں ہو رہی ہے اور جسے الگ الگ روپوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ابلیس اور اس کے انویائی مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی رکشا کے نام پر دھوکہ دینے میں ویست ہیں۔ وہ آزادی کا نعرہ دے کر یہ بھرم پھیلاتے ہیں کہ حجاب ان پر لگایا جانے والا انکش ہے، جبکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہر کوئی مانے گا کہ حجاب آزادی پر انکش نہیں لگاتا بلکہ وچاروں کے سوتنتر آدان پردان اور کشمتاؤں کے وکاس کا مارگ سمتل کرتا ہے۔ ہم ویوہارک روپ سے یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سی مہیلائیں سماج میں بہت مہتوپورن پدوں پر بےحد اہم کام انجام دے رہی ہیں۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے سنستھاپک امام خمینی کہتے ہیں کہ مہیلا کی آزادی کے وشے کو اس طرح بھرم میں ڈال دیا گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام مہیلاؤں کو گھر کے کونے میں بٹھا دینے کے لیے آیا ہے۔ مہیلا اور پرش میں کوئی انتر نہیں ہے۔ بے شک اسلام میں مہیلا کو حجاب کی پابندی کرنی ہوتی ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ مہیلا کا ویکتتو وکاس کرے اور وہ ایک سنجیدہ انسان کی طرح اپیوگی بھومیکا نبھائے۔
کچھ آلوچکوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مہیلائیں اپنا شریر ڈھانک کے اور حجاب کا خیال رکھیں تو اس سے ان کی پرتشٹھا بڑھے گی۔ ایک بھوتکوادی دارشنک برٹرانڈ رسل کہتے ہیں کہ اگر سماج میں اشلیل تصویریں پھیلا دی جائیں تو کچھ سمے کے بعد لوگ ان تصویروں کو دیکھنا بند کر دیں گے۔ اسی طرح اگر مہیلائیں ادھورے لباس میں لوگوں کے سامنے رہیں گی تو کچھ سمے بعد پرشوں کی نظر میں ان کا آکرشن کم ہو جائے گا۔ پشچم نے یون سمبندوں کو نرنکش بنانے کی شیلی اپنائی اور یہ اندازہ لگایا کہ اس سے ماحول بہتر ہو جائے گا، لیکن امریکہ میں اس سندرب میں آنکڑے بتاتے ہیں کہ اس پریوگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ یون سمبندی دشکرم بری طرح سماج میں پھیلے ہیں اور سمل لینگکتا پرچلت ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ خون کا رشتہ جن لوگوں کے بیچ ہے وہ ایک دوسرے سے اور کچھ انسان تو جانوروں سے یون سمبند بنانے لگے ہیں۔ امریکہ کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ 3% پرشوں کو یون دراچار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیشنل سیکشوال وائلنس ریسورس سینٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ میں 24.8% پرش ایسے ہیں جنہیں جیون میں کم سے کم ایک بار یون دشکرم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
اگر سماج میں حجاب کی جگہ بے حجابی پھیل جائے تو سماج میں اس کے دشپربھاؤ بری طرح پھیلیں گے، جن میں سے ایک مہیلاؤں کا اسرکشت ہو جانا ہے۔ ہالینڈ کے قانون منترالے نے اپنی رپورٹ میں ایک سروے کا حوالہ دیا جس کے انوسار اس دیش میں 83% مہیلائیں اور لڑکیاں سڑکوں پر یون اتپیڑن کا نشانہ بنتی ہیں۔ اس سروے رپورٹ کے انوسار 63% مہیلاؤں اور لڑکیوں کا کہنا ہے کہ یون اتپیڑن کی وجہ سے انہیں اسکول، جم خانے یا دوسری جگہوں پر جانے کا پروگرام بدلنا پڑا ہے۔
ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو لباس اور حجاب کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ اسلام میں لباس اور حجاب کا مہتو اتنا زیادہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے مہتو کے ساتھ لباس پہنانے کا مہتو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک پرکار سے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لے تو اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے یا 10 لوگوں کو لباس دے۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔ دوستو، ایرانی تیل کے راشٹری کرن کے سمبندھ میں ایک وشیش کاریکرم کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، تیل اور گیس وہ پراکرتک سمپدا ہیں جنہیں مہان ایشور نے انسان کو پردان کیا ہے، اور عام طور پر جو دیش ان نعمتوں سے سمردھ ہیں ان کی آرتھک کافی بہتر ہے۔ ایشور نے دنیا کے جن دیشوں کو اس نعمت سے نوازا ہے ان میں سے ایک اسلامی گنتنتر ایران ہے۔ ایران تیل اور گیس سہت بہت سی پراکرتک انوکمپاؤں سے سمردھ ہے۔ تیل کو کالا سونا بھی کہا جاتا ہے، اور ایران کی آرتھک استھتی میں تیل کی مہتوپورن بھومیکا ہے۔ اگر تیل کی اپما ایران کی ارتھ ویوستھا کی ریڑھ کی ہڈی سے دی جائے تو اتی شوکتی نہ ہوگی، پرنتو دیش کی ارتھ ویوستھا کی اس مولیوان دولت پر امریکہ اور برٹن نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان دیشوں دوارا ایران کے تیل ادیوگ پر قبضہ کر لینے کا ارتھ ایرانی ارتھ ویوستھا اور اس کے وکاس پر قبضہ کر لینا تھا۔
بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ایرانی راشٹر کے وکاس کے لیے تیل اور اس سے ہونے والی آمدنی بہت مولیوان و مہتوپورن ہے، اس لیے انہوں نے ایران کے تیل ادیوگ کو امریکہ اور برٹن کے چنگل سے سوتنتر کرانے کے لیے سنگھرش آرمبھ کر دیا۔ जो लोग ईरानी तेल के राष्ट्रीयकरण के इच्छुक थे, इसके लिए वे संघर्ष करते थे और तेहरान सहित ईरान के विभिन्न नगरों में प्रदर्शन भी होते थे। पर उन लोगों को अमरीका और ब्रिटेन के क्रोध का सामना होता था। ये देश इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि ईरानी तेल से उनका वर्चस्व खत्म हो जाए।
ईरानी सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने भाषण में कह दिया था कि एकमात्र रास्ता तेल का राष्ट्रीयकरण हो जाना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन ने उनकी कानूनी सरकार के खिलाफ वर्ष 1953 में विद्रोह करवाकर उसे गिरा दिया था। विधित रूप से ईरानी तेल आजाद था, परंतु वास्तव में उसके निकालने, बेचने और उससे जुड़े समस्त कार्यों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपना वर्चस्व जमा रखा था और शाह को अपनी मर्जी से तेल निकालने और उसके बेचने की अनुमति नहीं थी। ईरान की जागरूक जनता व लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अमेरिका और ब्रिटेन उनकी राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रहे हैं, इसलिए उन्होंने तेल के राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन चला रखा था और अंत में ईरानी जनता व लोगों का संघर्ष रंग लाया और 24 इस्फंद को ईरानी संसद और 29 इस्फंद को ईरानी सीनेट में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में तेल को ईरानी राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद समूचे ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई।
ईरानी तेल के राष्ट्रीयकरण के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां तेज कर दी और उन्होंने अपनी कंपनियों और अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों को ईरान के तेल उद्योग से निकालना आरंभ कर दिया। इस काम से वे ईरान के तेल उद्योग को ठप कर देना चाहते थे। उन्होंने ईरान से तेल लेना भी बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में एक प्रकार से उन्होंने ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। वो समय भी आ गया जब 11 फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हो गई। इस क्रांति के सफल हो जाने के बाद ईरानी तेल का वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीयकरण हुआ और अब इससे होने वाली आमदनी को देश के विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में तेल के राष्ट्रीयकरण से देश और जनता के विकास व कल्याण की आधारशिला रखी गई और इससे राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद तेल का वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीयकरण न हुआ होता और उससे होने वाली आमदनी को देश और लोगों के विकास पर खर्च न किया जाता, तो आज देश में जो प्रगति हुई है वो न होती। तेल का राष्ट्रीयकरण ईरान की आर्थिक विकास व प्रगति की जान है।
तेल ईरानी अर्थव्यवस्था का आधार है। आज अमेरिका और ब्रिटेन दूसरे वर्चस्ववादी देशों की अपेक्षा ईरान से जो अधिक शत्रुता करते हैं, उसकी एक वजह यह है कि इन देशों के हाथ से ईरान की अपार व मूल्यवान तेल संपत्ति निकल गई और ये देश ईरान में वापसी का सपना देख रहे हैं। यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के सफल होने से पहले ही तेल का राष्ट्रीयकरण हो गया था, परंतु व्यवहारिक रूप से उसका जो फायदा ईरानी राष्ट्र को पहुंचना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि ईरान का तेल उद्योग पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर था।
अप्रैल 1951 को ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने तेल के राष्ट्रीयकरण के कानून को लागू करना आरंभ किया, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने अगस्त 1953 में उनकी कानूनी सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाकर उसे गिरा दिया। ये विद्रोह अमेरिका और ब्रिटेन के षड्यंत्रों का मात्र एक भाग था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, कैलिफोर्निया और टेक्सास नामक तेल कंपनियां ईरान में आ गईं और उन्होंने जमकर ईरानी तेल की लूट खसोट आरंभ कर दी। इस लूट खसोट की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले तक तेल उद्योग पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर था। इसीलिए तेल के राष्ट्रीयकरण हो जाने के बावजूद तेल उद्योग ईरानी राष्ट्र के हितों को स्वतंत्र व सुरक्षित बनाने में कोई बुनियादी परिवर्तन उत्पन्न न कर सका। तेल उद्योग ईरान की आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण बल्कि मूल स्रोत था और इस चीज को इस्लामी क्रांति के दुश्मन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उन्होंने ईरानी तेल पर भी अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान को विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा है।
लगभग 43 साल से ईरान को विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना है, परंतु ईरान ने दुश्मनों के प्रतिबंधों को अवसर में बदल दिया है। दुश्मनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान का तेल उद्योग स्वतंत्र हो जाएगा और ईरानी तेल उद्योग से संबंधित समस्त कार्यों को अपने हाथों में ले लेंगे। मगर ईरान के प्रतिभाशाली युवाओं और लोगों ने ये करके दिखा दिया। यही नहीं, आज ईरान तेल उद्योग से संबंधित तकनीक में दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले उसने इस संबंध में वेनेजुएला की जो मदद की है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
ईरान के पास 33 ट्रिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस और 157 अरब बैरल कच्चा तेल है। इसके अलावा भी ईरान बहुत सारी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और मालामाल है। आज इस्लामी क्रांति के दुश्मन जो ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि वे चाहते हैं कि इन प्रतिबंधों से जनता ईरान की इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ी हो और उनकी कल्पना के अनुसार जब इस्लामी व्यवस्था का अंत हो जाएगा तो ईरान में हमारी इच्छा की सरकार गठित होगी और हम एक बार फिर ईरान के प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कर सकेंगे।
दूसरे शब्दों में आज दुश्मन जो ये दिखा रहा है और कह रहा है कि उसे ईरान में मानवाधिकारों के हनन की चिंता है, तो उससे ये पूछा जाना चाहिए कि शाह के तानाशाही दौर में जब ईरानी जनता की हत्या की जाती थी तो वो क्या था। उस समय मानवाधिकार की रक्षा के ठेकेदारों को ईरान में कहीं भी मानवाधिकार का हनन नजर नहीं आता था। शाह के सुरक्षा कर्मियों ने कितने हजार ईरानी नागरिकों और जनता को शहीद कर दिया, परंतु कभी भी मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वालों को मानवाधिकार का हनन दिखाई नहीं दिया। यही नहीं, आतंकवादी गुट MKO ने 17,000 से अधिक ईरानी नागरिकों और अधिकारियों को शहीद कर दिया, पर मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापने वालों को कभी भी मानवाधिकार का हनन दिखाई नहीं दिया। बहरहाल 29 इस्फंद के दिन को समूचे ईरान में तेल के राष्ट्रीयकरण के रूप में मनाया जाता है। ईरान इस समय तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योग में जरूरी उपकरणों व संसाधनों के निर्माण में 85% आत्मनिर्भर हो चुका है और शेष 15% जरूरी उपकरणों के निर्माण की दिशा में प्रयासरत है।
बाईस के आरंभिक महीने में ईरान के तेल उत्पादन में प्रतिबंधों के बावजूद 21,000 बैरल की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से कि प्रतिदिन तेल का उत्पादन 25 लाख बैरल से अधिक हो गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। तेल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि ईरान ने जनवरी महीने में 25 लाख से अधिक बैरल तेल निकाला है, जो दिसंबर महीने की अपेक्षा 21,000 बैरल अधिक था। ईरान के तेल उद्योग में होने वाले प्रगति इस बात की सूचक है कि ईरानी राष्ट्र के प्रतिभाशाली जवान जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं, वहीं वे अमरीकी प्रतिबंधों को प्रभावहीन बना रहे हैं और वो दिन अधिक दूर नहीं है जब ईरान दुनिया के स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक आदर्श देश में परिवर्तित हो जाएगा।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
Oh, Thank you.